नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे ब्रह्म मधु गौड़ी संप्रदाय में यह हरे कृष्ण महामंत्र को श्रेष्ठ माना गया है। बाकी दूसरे संप्रदायों में दूसरे दूसरे हरि नाम संकीर्तन, सीताराम सीताराम और वैष्णव संप्रदाय में भी कई बाउल संप्रदाय हैं। 13 बाउल संप्रदाय होते हैं जिनको सहजिया कहते हैं। हरे कृष्ण हरे राम नीताई गौर राधे श्याम, नवदीप में आपने तो ये लोग सहजिया, नाम भी जपना, मच्छी भी खाना और मच्छी को भोग भी लगा देना, दारू भी पियेंगे, पहले भगवान को भोग लगा देंगे। बोले भगवान ने गीता में बोला, अरे दारू भोग लगाने के लिए थोड़ी बोला है। तो कई सहजिया लोग होते हैं जो नाम भी बहुत करेंगे जब हरे कृष्ण सीताराम, लेकिन बुरे व्यसन छोड़ नहीं सकते। दारू भी पीना है, मछली मटन सब खाना है और उसको भोग भी लगा देना है। विशेषकर बंगाल में ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे। इसलिए गौड़ी वैष्णवाचार्यों ने उनको कहा सहजिया, मतलब सब करेंगे नाम भी करेंगे, तो ये युक्ति ठीक नहीं। और कई गौड़ी वैष्णव तिलक वाले हैं, वो आपने देखा होगा एक दूसरा कीर्तन करते हैं, नीताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। अब रेमुना में गए होंगे उड़ीसा, जहाँ खीरचोर गोपीनाथ का मंदिर है, वहां ये मंत्र गाते हैं, नीताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे। ये मंत्र ऑथराइज नहीं है, चैतन्य महाप्रभु द्वारा ऑथराइज नहीं है ये मंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र जो है कलि संतरण उपनिषद का मंत्र, 108 उपनिषद होते हैं, उन 108 उपनिषदों में 100 उपनिषद सिर्फ कृष्ण की शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं। उनमें गोपाल पुरुतापनी उपनिषद, श्री कृष्ण पुरुतापनी उपनिषद, कलि संतरण उपनिषद, ऐसे 100 उपनिषद। और दसम स्कंद में जब भगवान की 16,107 पत्नियों का वर्णन आता है, तो उसमें कई वेदांती लोग बताते हैं कि जो 108 उपनिषद हैं, ये भी 16,108 पत्नियों में भगवान की 100 पत्नियां थी। तो कलि संतरों उपनिषद में हरे कृष्ण महामंत्र लिखा, लेकिन उसमें क्या लिखा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभी भी कई लोग हरे राम पहले पहले गाते। तो चैतन्य महाप्रभु का जब आविर्भाव हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र में संशोधन किया कि हरे कृष्ण पहले हरे राम बाद। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगु पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजंती ही सुमेधसा, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में भविष्यवाणी किया कि कृष्ण ही कलि काल में नाम संकीर्तन करने के लिए अपने परिकरों के साथ गौरवाण में अवतरित होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क में जो नीचे री है क्री, वो क्री कैसी है, खुरपी जैसी। खुरपी किसके पास होती है, या तो किसान के पास या जो बगीचे में माली काम करता है उसके पास। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो 16 अक्षर का मंत्र है इसको महामंत्र कहा, दूसरे जो अन्य मंत्र है इनको मंत्र कहा। इसमें क के नीचे जो री है, वैसे बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से वो री का बड़ा इफेक्ट है, वो क के नीचे री है, क्री। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई माली के हाथ में खुरपी हो, किसान के हाथ में खुरपी हो, तो माली क्या करता है, बगीचे में सुंदर फूल को विकसित करने के लिए फूल के जो किनारे से अनावश्यक झाड़ जम गई है उस झाड़ को उस खुरपी से काट देता है। और किसान भी ऐसे ही करते हैं, फसल को अच्छा विकसित करने के लिए उसके आजू बाजू जो अनावश्यक झाड़ होती है वो झाड़ को खुरपी से निकाल देते। इससे जो वैष्णव लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ये जो क्री शब्द है ये उनकी अनावश्यक इच्छाओं को उखाड़ फेंकता है। अब अनावश्यक इच्छाएं क्या है, राम नाम जपना पराया माल अपना। राम नाम जपना तक तो ठीक है, लेकिन पराया माल अपना ये अनावश्यक झाड़। चैतन्य 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 महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं ये अनावश्यक झाड़ क्या है, कामनाएं वासनाएं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे, एक फ्लैट मिल जाता है भगवान, 10-20 करोड़ रुपया मिल जाता है, हरे कृष्ण 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 राम, भगवान का नाम चिंतामणि है, जिस भाव में करेंगे तुरंत मिल जाएगा। श्री राधा राज बिहारी जी की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री गौर नेता जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो जो अनावश्यक झाड़ है ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से चला जाता है। लेकिन इसकी पहली स्टेज क्या है, नामापराध, नाम जपना लेकिन कामनाएं करना हो, पुत्र की कामना, पत्नी की कामना, धन की कामना, प्रतिष्ठा की कामना, मान सम्मान की कामना। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अमान्य न मान देना, शिष्टाष्टक में नाम जप कैसे, अमान्य न मान देना कीर्तनीय सदारी। और हम नाम जप कर रहे हैं कि किसने हमको प्रणाम किया नहीं किया, सब देखते रहते, कितने लोगों ने प्रणाम किया ये कोई नहीं देखता है, किसने नहीं किया फटक से दिख जाता है। प्रणाम भी तो करते हैं ना, तो जो प्रणाम करने वाले हैं उन पर ज्यादा नजर नहीं जाती, एक ने प्रणाम नहीं किया तुरंत नजर चली जाती। तो नाम की पहली स्टेज है नाम अपराध, नाम कर रहे हैं लेकिन अपराध भी कर रहे हैं। भक्ति के भी 3 स्वरूप हैं, नाम के भी 3 स्वरूप हैं, भक्तों के भी 3 स्वरूप हैं, नामा अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। भक्तों में भी कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। भक्ति में भी आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति और स्वरूप सिद्धा भक्ति। रूप गोस्वामी के भक्त सामचंद्र आरोप सिद्धा भक्ति क्या, नामापराध में लीजिए, आरोप सिद्धा भक्ति की कैटेगरी नामापराध और कनिष्ठ अधिकारी। आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं कि जो भक्ति नहीं है उसको भक्ति मान लेना आरोप सिद्धा भक्ति। जैसे जेठ के महीने में कोई व्यक्ति को बहुत गर्मी में प्यास लगी है, धूप लगी है और कहीं रास्ते में जा रहा है, तो रास्ते में उसे एक आम का पेड़ मिला और पेड़ की छांव में वो पथिक बैठ गया, तो उसको ठंड मिली, थोड़ी हवा भी मिली, लेकिन उस आम के पेड़ पर एक बबूल का झाड़ लगा हुआ था। तो बबूल के झाड़ के बाजू में जो आम का झाड़ है, उस आम के झाड़ में आम के फूल लगे हैं जिनको मंजरी कहते हैं। तो उस मंजरी का सुगंध आता है जैसे फूलों का सुगंध आता है। तो जो पथिक नीचे बैठा है उसको सुगंध आ रही है, सुगंध आ रही है ये बात भी अच्छी है। वो आम के और बबूल के पेड़ के नीचे बैठा है ये बात भी सच है। लेकिन जब उस व्यक्ति को किसी ने पूछा कि सुगंध कहां से आ रही है, तो वो बोला कि बबूल के पेड़ से आ रही है। बबूल का पेड़ भी है, आम का भी है, पथिक भी है, छाया है, सब है। लेकिन जब उसको पूछा गया पर्सनली कि खुशबू कहां से आ रही है, तो आम का पेड़ नहीं बताता, कहता बबूल के पेड़ से आ रही है। इसको कहते हैं आरोप करना। बात सही है, वहीं पर है वो बात, लेकिन आम की जगह बबूल को इंगित करना ये आरोप है उसका। वैसे भक्ति का फल सांसारिक सुख वैभव नहीं, भगवान नाम का फल भगवान है, उनका प्रेम है, न कि ये सांसारिक वस्तु। भगवान की कृपा से सब अच्छा व्यवस्थित चल रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है, सब भगवान ने अच्छा किया है, और एक दिन लुढ़क दिया, फिर नहीं अभी भगवान नहीं, मैं तो बड़ा विश्वास करता था, अभी तक है, अभी तक लाखों रुपए कमाई हो रही थी, अभी तक भगवान थे, और अभी नुकसान हो गया, अभी भगवान नहीं। ये किसका लक्षण है? नामापराधी का। जब तक फायदा है तब तक नाम, फायदा नहीं कोई नाम नहीं, कोई भगवान नहीं। हमने एक बात देखा, एक आदमी किसी स्त्री के पति मर गया था जवान, तो उनके यहां शिवजी का मूर्ति, तो उसने क्या किया, जैसे ही पति का शरीर लेके शमशान को गए, उसने शिवजी को भी उठा के बाहर फेंक दिया। बोला बहुत पूजा हो गई तुम्हारी, तुमने आज हमारे पति को मरवा दिया, बाहर जाओ यहां से चलो। मतलब शिवजी को अपने घर में उसने ठेकेदार बना के रखा है कि हमारे पति बच्चे परिवार सब सबकी गारंटी तुम्हारी है, और जिस दिन नुकसान हो गया बाहर धकेल दिया शिवजी को। और शिवजी तो पहले ही बाहर रहते हैं, कैलाश पर्वत में अंदर रहते हैं क्या? तो ये नामापराध का लक्षण, और कनिष्क अधिकारी और आरोप सिद्धा भक्ति। लेकिन जब नामापराध में व्यक्ति सोचता है कि नहीं नहीं मैं जरूर अपराध कर रहा हूं, इसका फल ये नहीं है, इसका फल कुछ और है, वो फल क्या है? संग सिद्धा भक्ति, कि भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। अपराध कर रहा है लेकिन अंदर आभास है नहीं नहीं ये गलत चीज है, मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आ रहा होगा, तो जब नाम जप करते 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 उसे नामाभास में उस प्रवेश होगा और संग सिद्धा भक्ति मिलेगी। अब नामाभास और संग सिद्धा भक्ति क्या है? संग सिद्धा भक्ति कहते हैं भगवान के भक्तों के संग में रहना। साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कौन लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लेकिन कोई कहे अभी 20-25 साल बहुत संग कर लिया, अभी अकेले कुछ करना चाहिए, तो रूप गोस्वामी पाद इसका उदाहरण देते हैं। एक कीड़ा है मंदिर में, एक कीड़ा घूम रहा है इधर, वो राधा राज बिहारी जी का दर्शन करना चाहता है, संभव है? मेरी नजर पड़ेगी मैं उसको झाड़ू से भाषण दूंगा, जिसकी भी नजर पड़ेगी उसको फटका देगा। लेकिन कभी कभी कोई भाग्यशाली कीड़ा उधर से चले जाए, जिधर ये फूल बन रहे हैं इस फूल में घुस जाए अंदर, जिधर माता जी लोग फूल बना रहे हैं, किसी की नजर ना पड़े, और वो चुपचाप किसी फूल के अंदर घुस जाए, और वो फूलों की जो माला बन रही है वो फूल माला में घुस जाए, और वो फूल राधा राजबिहारी के गले में चले जाए, तो कीड़ा फूल का संग करने से जो दर्शन करने के लिए तरस रहा था वो भगवान के गले का हार बन सकता है। लेकिन कब तक? जब तक फूल के अंदर है। अब कीड़ा सोचेगा अभी राजभोग अभी लग गया भोग, अब फूल का दर्शन भी सुबह से हम फूल के अंदर भी घुसे हैं, ठीक 12:30 बजे थोड़ा मालपुआ खा के आऊं बाहर, अब पुजारी जी की नजर पड़ गई उस पर, सबसे पहले कीड़े को बाहर फेंक देगा। तो कीड़े का ये विचार करना गलत है कि अब फूल का संग छोड़ दो क्योंकि हम भगवान के गले में आ गए। जैसे वो फूल का संग छोड़ेगा फिर वो वहीं जा सकता है जहां पहले खड़ा था। इसलिए कोई भक्त साधक की विचार करे, हमने बहुत साधु संग कर लिया, बहुत सत्संग, आप अकेले भजन करना चाहिए, तो कैसा होगा? वो कीड़े की तरह हो जाए। इसलिए हमेशा साधु संग, बिना साधु संग, और हमेशा साधु संग में हरि नाम करेंगे, वो नामाभास करेंगे, वो नाम की स्थिति कैसी होगी? दूसरी स्टेज, उसको कहते हैं नामाभास। तो स्वरूप सिद्धा भक्ति में प्रवेश होगा, जिसे उत्तमा भक्ति भी कहते हैं। स्वरूप सिद्धा भक्ति कहते हैं गुरु वैष्णव के साथ सब प्रपंचों से दूर रह करके जो भगवत विरुद्ध प्रपंच हैं, भगवान की भक्ति में बाधक हैं, उन प्रपंचों से दूर रह करके हमेशा गुरु भक्तों का, ज्येष्ठ वैष्णव का संग करके, उनके अनुगत्य में सेवा करके भगवान का भजन करना स्वरूप सिद्धा भक्ति है। और रूप गोस्वामी इस पर श्लोक लिखते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादि आवृतम अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। नारद पंचरात्न में भी नारद जी लिखते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परितेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। ये उत्तम भक्ति का भाग्य ऐसे नाम की महिमा, कोई किसी तरह भी नाम ले। एक साधारण रूप से कहा, लेकिन हमारे गोस्वामी ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने ग्रंथों के माध्यम से उसे बड़े अच्छे तरीके से बताया, लेकिन साधारण तौर पर तो भगवान का नाम फायदा ही देता है। वाल्मीकि प्रकरण की कथा आती है, एक डाकू जंगल में लूटता था लोगों को, उनका काम है लोगों का गला घोंटना, उनका सामान छीन लेना। इतने में नारद जी आ रहे थे वीणा बजाते हुए, हरिनाम संकीर्तन करते हुए, तो डाकुओं ने नारद जी को पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, निकालो। तो नारद जी ने कहा, हम तो जेब वाला कुर्ता ही नहीं पहनते हैं। तो डाकू ने कहा, सब पैसा ही बीणा के अंदर रखता है तुम। साधु लोग कभी कभी एक कमंडल दिखाते हैं, विशेषकर मायावादी साधु, आपने देखे होंगे। हमारे एक मायावादी साधु पहचान का है, वो एक बार पुणे से विदाउट टिकट आ रहा था ट्रेन में, तो टीसी ने कहा टिकट दिखाओ, उसने कहा हम खुद ही देखो, धोती लपेट के चल रहा है, हमारे पास जेब वाला कुछ है, हम फक्कड़ आदमी। उसने कहा ये खोपड़ा दिखाओ जरा लकड़ी का, तो उसमें दो मोबाइल रखे हुए थे। तो टीसी ने कहा तुम बोल रहा पैसा नहीं आ रहा, ये कमंडल में मोबाइल लेके घूमता है, निकालो पैसा। तो डाकुओं ने कहा नारद जी से कि बड़े बड़े राजा महाराजा आपके शिष्य हैं, सब पैसे वाले आपके चेले हैं, तो तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, किसी को बोलो पैसा लाने के लिए। तो नारद जी के बहुत समझाने पर भी जब वो नहीं समझे, तब नारद जी ने कहा देखो तुमको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। तो डाकू ने कहा कि बताओ। नारद जी ने डाकू से कहा, आप जो ये गला घोटना, चोरी, बेईमानी, ये सब ठगीबाजी करते हो, किसके लिए? तो डाकू ने कहा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो नारद जी ने कहा मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जो ये सब करते हो और ये पाप कर्म है, मान लीजिए पाप है, पुण्य है, जो भी है, इसका साक्षी कौन है? तो डाकू बोला, ये तो हमको मालूम नहीं। तो नारद जी ने कहा, तुम पहले ये पूछ के आओ कि जिन लोगों के लिए तुम ये काम करते हो वो इसके फल के साक्षी हैं। डाकू ने कहा, मैं पूछ के आता हूं। फिर डाकू बोला, तुम बहुत होशियार है, पूछने के बहाने हमको भेजता और खुद भाग जाएगा यहां से। नारद जी ने कहा, तुम हमको बांध लो। तो डाकू ने नारद जी को पेड़ से बांध दिया, कहा कि जब हम आएंगे तभी गांठ खोलेंगे। और अपने घर गया, अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो दिन भर ये डकैती डालता हूं और तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं, तो इसमें आप हमारी साक्षी हो? तो पत्नी ने कहा, हमारे पिताजी के घर, मेरे पिताजी तुम्हारे घर आए थे, तुम्हारे पिताजी हमारे घर आए थे। हमारा पिताजी, तुम्हारे पिताजी हमारे पिताजी के यहां आए थे, अपनी लड़की हमको दे दो, नहीं कि मेरे पिताजी तुम्हारे घर नहीं गए थे, मेरी लड़की ले लो, तुम हमको शादी करके लाया है, तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना आपका कर्तव्य है, तो हम काहे को पाप के भागे रहेंगे, तुम अपनी ड्यूटी निभाओ, जो भी फल भोगना तुम्हें भोगा, हम कोई साक्षी नहीं। बच्चों को पूछा, बच्चों ने कहा, आपने हमको पैदा किया है, आपकी जिम्मेदारी है हमको पढ़ाना लिखाना, सब आवश्यकता की पूर्ति करना, इसलिए हम साक्षी नहीं हैं। माँ बाप को पूछा, उन्होंने कहा, जब तुम छोटे थे हमने तुमको सब कुछ दिया, आवश्यकता की पूर्ति की, अभी हम बूढ़े हो गए, अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारा लालन पालन करें। तब डाकू का दिमाग ठनका, मैं दिन भर इतना मेहनत करता हूँ, लोगों का गला घोंटता हूँ, ये कोई भी तैयार नहीं है साक्षी होने के। इस संसार में हमारे कर्मों का साक्षी कौन है? खुद हम हैं। अगर कोई कहे भी, नहीं नहीं मैं हूं तेरे, माने जाए, वो डाकू के परिवार में कोई बोल देता, ठीक है हम हैं तेरे कर्मों के साक्षी, क्या बोलने से? संयुक्त अरब अमीरात मुस्लिम कंट्री है, वह एक कसाई था बहुत बड़ा, दृष्टांत महासागर में एक दृष्टांत है, बहुत बड़ा कसाई, मांस का बहुत बड़ा व्यापार था। तो उसका एक ही लड़का था, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्य बहुत थे। तो कसाई एक दिन मर गया, तो उसका लड़का जो था वो धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो सब ने, परिवार वालों ने कहा, बेटा अब सारा बिजनेस व्यवसाय का भार तुम्हारे ऊपर आ गया। उसने कहा, मैं ये धंधा नहीं करूंगा, ये मार काट, बकरी जानवरों के गले काटना, ये हिंसा का काम मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा, हमारा तो धंधा यही है, हमारे 10 पीढ़ी से यही कारोबार चल रहा है, और तुम बोलता है ये तो धंधा चौपट हो जाएगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे। उसने कहा, मैं सब पाप का काम नहीं करूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। तो सब परिवार वालों ने कहा, तू पाप का काम तू करेगा तो हम भी तो साक्षी है ना, तू चिंता क्यों करता है, जो पाप होगा वो हम ले लेंगे, तू कम से कम काम तो कर, फैक्ट्री से माल। तो उस कसाई के लड़के ने एक दिन जिस खंजर से, चाकू से जानवर को काटते थे, उस खंजर से अपनी जांग काट दी, और बहुत कराहने लगा, रोने लगा कि मुझे दर्द हो गया, मेरा दर्द ले लो, मेरा दर्द ले लो। तो उसने सब परिवार के मेंबरों से कहा, जल्दी आके मेरा दर्द ले लो, मैं बहुत तड़प रहा हूं, जल्दी दर्द ले रहा हूं, तुम लोग इसके भागीदार हो ना, जल्दी से दर्द ले लो। वो चिल्लाता रहा, किसी ने दर्द लिया नहीं। तब कसाई का लड़का बोला, जब तुम हमारा थोड़ा सा दर्द नहीं ले सकते, पूरे कर्म के फलों के साक्षी हो सकते हो, तो मैं तुम्हारे खातिर अपना परलोक क्यों बिगाड़ू, मैं ये धंधा नहीं करूंगा। तो डाकू के मन में भी भाव आया कि अरे हम दिन भर पाप करते हैं और जिनके लिए हम करते हैं इसके साक्षी नहीं है, तो ये तो खामोखा श्रम ये वही केवलम। तो नारद जी के पास गया, उनकी रस्सी खोली, प्रणाम किया, कहा कि आपने सही सही कहा, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बहुत पाप किए, अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि इन सब पापों से हमारी निवृत्ति हो। तब नारद जी ने कहा, तुम उल्टी खोपड़ी का उल्टे काम करने वाला है, इसलिए भगवान का सीधा नाम तुमको जमेगा नहीं। इसे राम नाम कहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसका उल्टा जपा करो, मरा 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 मरा। तो डाकू उल्टा नाम जपने लगा, मरा मरा मराम 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 मरा मरा करके राम मा आ गया। उल्टा नाम जपा हरि जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान का उल्टा नाम जपने से एक डाकू वाल्मीकि जैसा प्रकांड विद्वान और वाल्मीकि रामायण लिख सकता। तो ये नाम की महिमा है। नाम जपने से क्या होगा? चित्त दर्पण मार्जन, चैतन्य महाप्रभु कहते चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामिता साधनम सर्वात्मस्य पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा और चित्त रूपी दर्पण में जो धूल जम गई है उसी के लिए हमें सब बुरे काम करते हैं, बुरे विचार करते हैं, बुरी प्लानिंग करते हैं। जब चित्ररूपी दर्पण का मार्जन हो जाता है तो जीव को यह आभास हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूं। जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ममेवांश जीव लोके जीव भूत सनातन पिता मतलब। जीव को आभास होता है, इसलिए नाम जप की बड़ी महिमा है। अजामिलोपाख्यान श्रीमद् भागवत में अजामिल इतना दुष्ट प्रवृत्ति का ब्राह्मण का लड़का, आप उपाख्यान पढ़ते हैं, बहुत बड़ा पापी, विश्व प्रसिद्ध पापी था वो। और हरि नाम के द्वारा, लेकिन जो भगवान का नाम है वो भगवान के किसी शुद्ध भक्त द्वारा दिया हुआ होना चाहिए। कोई ये समझे कि मैंने फलाने जगह नाम सुन लिया, उस नाम से मुझे लाभ हो, नाम जपना अच्छा है लेकिन जब तक गुरु से ग्रहण नहीं किया वो नाम फलित नहीं होता है, क्योंकि नाम ऑथराइज नहीं है। नाम जप तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो नाम ऑथराइज कब होगा? जब किसी गुरु के चरणाश्रित है, गुरु शरणाश्रित। तो अजामिलोपाख्यान में अजामिल मरने लगा, बड़ा पापी, यमदूत आए, पिटाई कर रहे थे उसकी, छोटे वाले लड़के को पुकारा, नारायण नारायण कर, भगवान के वैकुंठ में आवाज गई। भगवान ने कहा कोई पुकार रहा है हमको। विष्णु दूत ने कहा अजामिल है भगवान, अरे पुकार रहा है। दूतों ने कहा आपको नहीं पुकार रहा है, अपने छोटे लड़के को पुकार रहा है। श्री श्री राधा राजबिहारी जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान से श्री कौन निताये की। लक्ष्मी जी ने कहा, यम दूतों विष्णु दूतों ने कहा उसके छोटे लड़के का नाम नारायण है, उसको पुकार रहा है। भगवान ने कहा देखो अब वो उसको पुकार रहा है या हमको पुकार रहा है, लेकिन हमारा नाम भी तो नारायण है और हमने सुन लिया है। अपने दूतों से कहा जाओ तो उसको लेके आओ। ये नामाभास की स्थिति है। तो विष्णु दूत गए, यमदूत पकड़ के ले जा रहे थे, सामने डायरोमा है अजामिल का, तो बहुत पिटाई कर रहे थे यम के दूत, बहुत पिटाई करते हैं। भागवत के पंचम स्कंद में 26 तरह के नरकों का वर्णन है, कहीं कहीं पर 28 भी है। एक एक कर्म का फल भोगना पड़ता लिखा। हम समझते थे पहले खाली एक ही नरक होता होगा, स्वर्गवास या नरकवास, लेकिन भागवत में 28 तरह के नरकों का वर्णन, इस पाप का ये फल, इधर का ये, इधर का ये, रौरव महारौरव कुंभी पाक सूचीमुख 28 नरक हो। और वहां किसका राज? ये यमदूतों का। इतनी धुलाई होती है, भागवत में लिखा है सुखदेव गोस्वामी पाद। इधर हम सोचते हैं कौन देख रहा है, अच्छी जान पहचान है, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम तो प्राइम मिनिस्टर है, रेट बढ़ा देगा, कोई मरे भूखे कुछ भी हो, अब पता लगेगा जब ऊपर जाओगे। भगवान के यहाँ किसी का चलता थोड़ी है, वो सब उनके दूतों के हाथ में रहता है। तो अजामिल की धुलाई कर रहे थे, पीट पीट के ले जा रहे थे, चिल्ला रहा है नारायण नारायण नारायण। इतने में विष्णु दूत आ गए। विष्णु दूतों ने कहा हम दूतों से, छोड़ दो इसको, ये हमारे यहां का आदमी है। तो यमदूतों ने क्या सोचा, यमदूत समझते हैं कि यमराज ही सबसे बड़ा आदमी है। उन्होंने कहा ये हमारा आदमी है, इसने अपराध किया है, हमारे मालिक का आदेश है, इसको लेके आओ। विष्णु दूतों ने कहा हम लोग बैकुंठ से आए हैं और इसको छोड़ दो। तो भागवत में वार्ता है यमदूत और विष्णु दूतों के बीच। यमदूतों को यह मालूम नहीं है कि भगवान कौन है, वो यमराज को भगवान समझते हैं, उसी को मालिक समझते हैं। तो जब विष्णु दूत अजामिल को लेकर चले गए तो यमदूत खाली हाथ गए यमलोक। तो यमराज ने कहा किधर है अजामिल, उन्होंने कहा कोई और लेके चले गए, शंख चक्र गदाधारी तिलक लगा रखा था, धोती पीली धोती पहन रखी थी। यमराज समझ गया वो विष्णु के आदमी थे। तो यमदूतों ने कहा कि कौन थे वो, यमराज ने कहा वो विष्णु दूत थे। तो यमदूतों ने कहा कि आपसे भी बड़ा कोई है क्या, यमराज को पूछा। तो यमराज ने कहा वही हमारे इष्ट देव है, मैं उन्हीं के नाम का भजन करता हूं। तो यमराज ने अपने दूतों से उस दिन एक नया नियम बनाया, जिसके सिर पर तिलक हो, गले में कंठी माला हो, शिखा हो, और जिसके हाथ में हरि नाम की माला हो, और जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हो, कभी भी भूल के उसके घर में मत जाना। अपने दूतों को आदेश दिया। इसे जो लोग हरिनाम करते हैं, चाहे नामाभास की स्थिति में, तो कभी भी अमराज के दूत उनको टच नहीं करते। जिनके गले में कंठी माला होती है उनको कंठी माला देख के ही यमदूत भाग जाते हैं। अरे ये तो विष्णु का आदमी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है, अपनों को इधर हाथ नहीं डालना चाहिए। बीएमसी वाले कौन से कुत्ते को पकड़ के ले जाते हैं जिसके गले में पट्टी नहीं होती। तो जिसके गले में पट्टी नहीं मतलब इसका कोई मालिक नहीं है, उठाओ इसको। तो जिसके गले में माला नहीं, कोई बोलेगा नहीं सोने की चेन तो है, उसको यमराज पहले ले जाते हैं सोने की चेन वाले। लेकिन तुलसी की माला जिसके गले में है, यमराज ने कहा है उसको हाथ मत लगाना भाई। शिखा, शिखा होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हम भक्त हैं, हिंदू हैं, ये हैं। एक बहुत बड़े संत हैं भारत के, राम सुखदास जी महाराज, गीता भवन ऋषिकेश में। वो कहते हैं कि जो अपने आप को हिंदू बोलता है, सबसे पहले अपने पीछे हाथ लगाओ, उसका शिखा है कि नहीं है। शिखा है नहीं, बोलता मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये हूँ, पहचान कुछ है नहीं, वो कोई हिंदू वगैरह नहीं है। एक साधारण बात कही, जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं, मैं ये हूँ वो हूँ, शिखा तो कम से कम। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं, विष्णु के जो उपासक हैं, कृष्ण के उपासक, वो शिखा रखते। शिखा क्या काम करती है, एंटीना का काम करती है, ऐसा भक्त लोग बताते हैं। जैसे टेलीविजन है, आपके घर में 1,00,000 रुपए का टेलीविजन है, लेकिन 200 रुपए का एल्युमिनियम का एंटीना नहीं है छत में, तो एक भी चैनल क्लियर आएगा धप 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 धप। तो जिनकी शिखा नहीं है लेकिन हरे कृष्ण उनको भगवान कैसे दिखेंगे, धप 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 धप। जिनकी शिखा है मतलब एंटीना फिट है, एकदम क्लियर न्यूज, क्लियर स्क्रीन, सब। जब षट गोस्वामी पूर्ववर्ती आचार्य हमारे भजन करते थे तो शिखा कंठी माला तिलक फिर नाम जप करते थे, आंख बंद करते थे तो गोलोक वृंदावन का सारा दृश्य उनको दिखाई देता था। इसे हमारे षट गोस्वामी ने किसी गुरुकुल में पढ़ के ग्रंथ थोड़ी लिखे, किसी गुरु के यहां थोड़ी गए, वो नामोच्चारण और ये सब प्रक्रिया से गोलोक वृंदावन की सब लीलाओं को देखते थे, वृंदावन की सब लीलाओं को देखते थे। नहीं तो जो आज हम वृंदावन देखते हैं, वृंदावन तो लुप्त हो गया था। षट गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से दोबारा वृंदावन, ये कोई भूगर्भ शास्त्री ने थोड़ी खोज निकाला, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है भूगर्भ का, किधर क्या था किधर क्या है, डायनासोर की हड्डी, भैंस की हड्डी मिल जाएगी बोलेंगे डायनासोर की हड्डी मिली है, कुछ न कुछ तो बोलना ही है। बारिश होगी 6 दिन बाद बोल देंगे 6 घंटे बाद होने वाली है, बैठे रहो घर में। तो किसी का साइंस, क्योंकि भजन नहीं है, अपना अपना दिमाग और अपना दिमाग होता नहीं। तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने भजन किया भगवान का, उनकी कृपा से जो दृश्य देखा वही उन्होंने लिख दिया। इसलिए ये कालीदह था, ये श्याम कुंड राधा कुंड, ये मानसी कुंड, ये गिरिराज गोवर्धन, ये नंदगांव, ये बरसाना, ये गोकुल, ये 88 खंबा, बलदाऊ जी, किसने बताया? हमारे गोस्वामी ने बताया। किसके बल पर? नाम के बल। इसे नाम जब हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम रोज करते हैं, 1 लाख मनीमन, 1 लाख धीरे धीरे, 1 लाख कीर्तन रूप, उनमें जो कीर्तनीय नाम है जो हम जोर जोर से करते हैं दूसरे लोग सुनते हैं उसको श्रेष्ठ नाम बताया गया। हरिदास ठाकुर का चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ेंगे तो उसमें हरिदास ठाकुर की लीलाएं हैं जिसमें कई लोग विरोध करते हैं उनका, तो हरिदास ठाकुर बताते हैं जो कीर्तनीय नाम है हरिनाम संकीर्तन का जो नाम है इसका फल ये हरिनाम जब जो हम बैठ के करते हैं इससे 100 गुना अधिक होता है। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है। तो हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम, और उस नाम का प्रभाव क्या हुआ कि बादशाह ने, उस मुस्लिम बादशाह ने जो स्त्री को वहां भेजा था उनको गिराने के लिए, वो नाम के प्रभाव से भक्त बन गए। ये नाम का प्रभाव, अभी हम नाम जपें और कहीं गिर जाएं तो नाम का प्रभाव थोड़ी हुआ, जिधर गिरे उसका प्रभाव, फिर हम बोल देंगे भगवान की कृपा से ही मिला है ले लो। अरे कृपा से नहीं मिला है, वो धक्का मार के मिला है। भगवान की कृपा से सांसारिक वस्तु नहीं मिलती, ये तो कर्म से मिल जाती है, मेहनत किया मिल गई। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो संस्कार रही तस फल चाखा, कर्म करने से मिलता है, लेकिन भगवान कर्म से नहीं मिलते, भक्ति से मिलते। इसे भागवत के 9वें स्कंद में बलि महाराज को भगवान पहली बात क्या कहते हैं कि मैं जिसके ऊपर विशेष अनुग्रह करता हूं उसका सब कुछ ले लेता हूं, मतलब माल मत्ता बैंक सब खाली कर देता हूं। अब कोई आदमी भजन करता है, दिन भर हरि कृष्ण महामंत्र जप रहा है, करोड़ों का बिजनेस है, अब नाम जब शुरू किया क्या समझा कि 2 का 20 करोड़ हो जाएगा। लेकिन कभी कभी नाम जपने वाले व्यक्ति का 2 करोड़ वाला आदमी 2 लाख में भी आ सकता है। तो जो 2 करोड़ का 2 लाख में आया समझो भगवान कृपा कर रहे हैं, अगर जो 2 करोड़ वाला 20 करोड़ में चला गया मतलब भगवान धक्का दे के बाहर निकाल रहे हैं हम और फंसा रहे ना। तो भगवान कहते हैं जिसके ऊपर विशेष अनुग्रह हमारा उसका सब माल मत्ता हमारा, हम उसके बलि महाराज। और दूसरी कृपा क्या है भगवान की, उसके घर में मैं झगड़ा करा देता हूं बोलते हैं, बीवी बच्चों से झगड़ा करा देंगे, मार धाड़, पत्नी मार रही है, बच्चा अलग मार रहा है, फड़क से बाहर आ गया है, चलो वृंदावन चलते हैं, फिर रेलवे स्टेशन गया, उधर से फिर वापस आ गया, बॉम्बे सेंट्रल गया, ट्रेन में भी बैठ गया था, फिर बोरीवली में ट्रेन लगी, फिर उतर गया, फिर घर में आ गया। तो पत्नी ने बोला कि तुम तो संन्यास लेने चले गए थे, बोला मैं तो चला गया था, लेकिन ये पोता हमारा है, ये याद आ गया हमको, कांदीवली से याद आ गया, बोरीवली में इसने उतारी दिया हमको। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य, बंदर वैराग्य, पत्नी को धमकाना, बच्चों को धमकाना, हरे कृष्ण मंत्र में जाके सन्यासी हो जाएंगे, हमको यहाँ 25 साल हो गया, हमको सन्यास नहीं मिलेगा, इनको आधे घंटे में सन्यास मिल जाएगा। कई लोग ये भी काम करते हैं घर में, इसको कहते हैं मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य बोलते हैं, तो शमशान। तो हरिदास ठाकुर 300,000 नाम जपते हैं, और कितना टाइम है बोल सकता हूँ। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर का, वो घड़ी भी देखना पड़ता है ना उधर घड़ी, तो हमारी आदत है 3 घंटा बोलने की, हम भागवत कथा करते हैं, और इधर क्लास 45 मिनट का है, तो हमारा राग बिगड़ जाता है जरा, तो हम घड़ी भी देखते रहते हैं, उसी हिसाब से बोलते हैं। चैतन्य भागवत में मुरारी गुप्त प्रसंग है, तो मुरारी गुप्त एक प्रसंग लिखते हैं कि एक बार एक वैष्णव का, दीक्षाधारी वैष्णव का किसी मुसलमान लड़की से प्रेम हो गया। अब उस समय की प्रथा के अनुसार एक वैष्णव ब्राह्मण कुल का लड़का और जो मुस्लिम कौम है उसको यवन कहा जाता है, तो वो लड़की पर उसका मन चला गया और समाज में बात फैल गई। तो समाज की प्रथा के अनुसार उस व्यक्ति को दंड दिया, वैष्णव को, भक्त को, कि तुम बनारस में जाके गंगा जी में जाकर डूब मरो जाओ, पहले सजा थी ना ऐसे अपराध। तो वो व्यक्ति बनारस में गंगा जी में डूबने जा रहा था आत्महत्या करने, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बनारस में रहते थे काशी में, तब उसकी भेंट चैतन्य महाप्रभु से हुई। उसने कहा प्रभु मैंने ऐसा ऐसा अपराध किया है और ये सजा हमारे लिए फाइनल हुई है, तो मैं अभी मरने जा रहा हूं, मैं सोचता हूं आपका दर्शन करूं बाद में डुबकी लगाऊं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपने जो अपराध किया है गंगा में आत्महत्या करने से इसकी मुक्ति नहीं होगी, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ये तो तुमने एक पाप किया। तो चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं, चैतन्य भागवत में ऐसा वर्णन है कि कोई व्यक्ति पाप कमाने की फैक्ट्री खोले, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खोले, और वो इंडस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या हो, पाप, खूब पाप किए जाए, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो पाप करने की जो इंडस्ट्री खोली है ना, वो इंडस्ट्री वाला इतने पाप कमा नहीं सकता जितना पाप एक नाम हरण कर सकता है, नाम में चेता। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो छोटा सा अपराध है, नाम से तो बड़े बड़े अपराधी व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, इससे तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और अपराध से मुक्त हो जाओ, ये नाम की महिमा है। तो अभी ऑन एंड ऑफ हो गया, तो नाम की महिमा के ऊपर ही बोलना है, ऑन एंड ऑफ हो गया है। किसी का कोई प्रश्न वगैरह है तो आप, तो प्रश्न में 10 मिनट हो जाएगा तो 9 बज जाएंगे। अरे माइक में बोलो,
हेलो, आज भी कोई बाई चांस मरते समय भगवान का कोई नाम बोल देगा नारायण, तो क्या विष्णुदूत आ जाएंगे?
ऐसे कोई विष्णु लोग नहीं जाता, कोई वहाँ चने बेचते हैं क्या विष्णु लोग में जाके? अभी ये आपका नाम क्या है?
मुकेश
जी, ये जापान में व्यापारी है ये दोषी जी। मेरे को बोलता है मैं रोज भगवान का दर्शन करता हूँ। मैं कहा जापान में करता है तुम? ये सब बातें, ये क्या है, एक गडरिया होता है ना गांव में, तो कई बकरियों को चुगाने के लिए जंगल में ले जाता है। गडरिया जानते हैं, ग्वाला, तो बहुत सारी भेड़ बकरियां होती हैं और ग्वाला होता है एक, तो उस ग्वाले को उतनी बकरियों को कंट्रोल में रखना, तो कैसे रखेगा, डंडे से? एक को मारेगा दूसरा भाग जाएगा, दूसरे को मारेगा तीसरा भाग जाएगा। तो उनको कंट्रोल में रखने का तरीका क्या है कि वो गडरिया क्या करता, अपनी मुट्ठी बंद करके रखता, मुट्ठी खाली है, मुट्ठी में कुछ है नहीं, तो मुट्ठी के ऐसे करेगा ले 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 ले, तो सब बकरियां उसके पीछे भागती, किसी बकरी को एक दाना भी नहीं मिलेगा। मछली मारने वाले होते हैं ना मछली खोर, वो क्या करते हैं, कांटे के ऊपर आटे की गोली लगा देंगे और फिर पानी में फेंकते हैं। तो मछली वो कांटे को खाने थोड़ी आती है, वो आटे की गोली को खाने के लिए आती है और फंस जाती है कांटे। तो कभी कभी संसार में या कहीं प्रवचन में या किसी शास्त्रों में या किसी महापुरुष की वाणी में कुछ बात ऐसी लिखी है बहुत सरल है, वो सरल नहीं है, वो उस तरफ खींचने का एक उपाय है। जैसे मछुआरे का उद्देश्य मछली को आटे की गोली खिलाने से नहीं है, मछली पकड़ने से। गडरिये का उद्देश्य बकरी को खिलाने से नहीं है, बकरी को अपनी जगह ले जाने से है। इसलिए महापुरुष लोग कभी कभी ऐसी बात कहते हैं कि कोई भी ऐसा नाम कर लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। अजामिल का क्यों नहीं हुआ? भागवत में वर्णन है, अजामिल तो नारायण नाम से गया, भगवान ने बैकुंठ में बुलाया तो उसको बैकुंठ में थोड़ी रखा, भगवान ने कहा तुम हरिद्वार में जाओ, गंडकी नदी के किनारे रोज भगवान नाम का जप करो, एक साल तक करना। ये भी कहा उधर आश्रम मत खोल देना, जाके गौशाला मत खोल देना, कोई होटल मत खोल देना, चुपचाप जप करना, जो कोई चढ़ा के चल जाए वही खाना, तब एक साल बाद में विमान भेजूंगा, तब अपने यहां बुलाऊंगा। तब अजामिल को नामाभास से शुद्ध नाम में प्रवेश हुआ, तब वैकुंठ में प्रवेश हुआ उसका। कोई बोलेगा ना हरे कृष्ण और ट्रेन में जा रहे हैं और ध्यान गया चर्च गेट और मर गया, तो गीता का श्लोक प्रमाण है ना, यंग यंग वापिस स्मरणम भाव, वो उस वक्त किस भाव में था, तज्जन्ते कलेवरं तंग तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। मरते वक्त उसकी जिस भाव की स्थिति होगी उस भाव को प्राप्त होगा। ये नहीं अजामिल में नहीं भी, अजामिल रियर केस है भागवत में, उसने अपने लड़के को पुकारा, क्योंकि वो लड़के का नाम भी नारायण है और नारायण नाम किसने दिया है, एक बहुत बड़े ऋषि ने दिया था वो नाम। अब मैं अपना नाम किसी कर्मकांडी पंडित से रखा लूं, बेटे का नाम नारायण और वो पंडित पीता हो दारू, बीड़ी फूंकता हो, गुटखा खाता हो, सुरती, तो उसका नाम तुम जपोगे बिल्ली भी नहीं आएगी बचाने के लिए। वो जो अजामिल के लड़के का नाम नारायण रखा था वो बहुत बड़े ऋषि थे कोई विंध्याचल पर्वत पे, और नारद जी की प्रेरणा से वो पृथ्वी पर आए, उन्होंने वो नारायण नाम रखा था, इसीलिए वो बच्चे का जो नारायण नाम है वो ऑथराइज हो गया, और ऑथराइज होने से भगवान ने उस नाम को ग्रहण कर लिया। ये इसकी कथा। और कोई प्रश्न पूछ, कोई प्रश्न नहीं है? बोले हरि नाम संकीर्तन सप्ताह की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरि।